दूसरे तरफ तो ग्रस्त नागपुर दिल्ली जाते हैं और दूसरे तो विजयवाड़ा और दूसरा मुंबई की तरफ। तो यदि हम मुंबई के रास्ते जाएंगे तो हम विजयवाड़ा पहुंच नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार भी कर्म अनेक प्रकार है और जैसे यंग स्वरम भाव त्यजंते कलेवरम थम थमे वाइते कौंतया सदा तद्भाव भाविता। श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले कि हमारे चेतन अंतिम समय मृत्यु का समय हमारे चेतन के अनुसार हम दूसरा जन्म लेते हैं। और इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत पूजा करते हैं ऐसा अनेक लोग भी भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की पूजा करते हैं, तो वैसे गति मिलते वे भी भूत प्रेत पिशाच बन जाएंगे। और जो पितृगान की पूजा करते हैं तो पितृ लोग जाते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध अति विशुद्ध की आराधना करते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। इसमें कुछ अंतर है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अगले जन्म में देवता हो सकते हैं, जो भूत और प्रेत की पूजा करते हैं तो अगले जन्म भूत और प्रेत बन जाएंगे। और जो पितृ की पूजा करते हैं तो पितृ लोग जाते हैं और पितृगण जैसे स्थिति मिलते हैं। जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो कृष्ण की स्थिति नहीं मिलते, कृष्ण की सेवा मिलते, तो वो फर्क है कि देवताओं की पूजा करने से देवताओं की स्थिति मिलते हैं और जो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो स्वयं श्री कृष्ण नहीं बन जाते, तो कृष्ण की सेवा मिलते। तो इसलिए केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति सनातन धर्म है। सामान्य रूप हम सोचते हैं कि सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म का दूसरा नाम, लेकिन हिंदू धर्म में कितना शाखा उपशाखा गलत शाखा है। हिंदू धर्म क्या है और जैसे बड़ा खिचड़ी है और जो भी मसाला डालते हैं जो भी सब्जी डालते हैं तो सब उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो ये सब वो सनातन नहीं है। तो एक बात है कि देव देवियों भी सनातन नहीं है, इंद्र चंद्र वायु यही सब स्थिति जो है वो सभी क्षणिक है। ये ब्रह्मांड की सृष्टि के पहले इंद्र चंद्र इत्यादि जो अभी है तो उस समय नहीं थे, वो एक पोजीशन है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, तो अभी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी है, वो सनातन पद नहीं है। इनके पहले कितना प्राइम मिनिस्टर थे, 8, 9, 10 ऐसे स्वतंत्र भारत में, और इनके बाद कितना होंगे पता नहीं है, लेकिन और भी आ जाएंगे। तो ऐसे भी इंद्र चंद्र ब्रह्मा ये सब देवताओं की स्थिति एक ऐसे पोजीशन है। और कोई कोई बहुत पुण्यवान जीव ऐसे स्थिति मिल सकते हैं। और कुछ दिन इंद्र का कुर्सी में बैठ रहे हैं, इंद्र का कुर्सी नहीं है सिंहासन, राज सिंहासन, और कुछ दिन के बाद चैतम भुक्तवा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशालं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कम फॉरवर्ड अ लिटिल बिट, यू आर क्रशिंग द लेडीज। जो पुण्य कर्म करके ऊपर जाते हैं स्वर्ग जाते हैं तो जाते हैं और विशाल स्वर्ग सुख भोग करते हैं, अप्सराओं के साथ नाचते हैं, सोमरस पीते हैं, गंधर्व का संगीत सुनते हैं। लेकिन एक दिन आएगा, इंद्रदेव आपका समय हो गया है, वापस हैदराबाद जाओ, फैक्ट्री में ही काम करो। वो स्थिति क्षणिक है। You shouldn't look, you're sitting too close to me. You have to be a good brahmachari. तो ये सब पद क्षणिक है। तो क्या स्थिति सनातन है जिसका ध्वंस कभी नहीं होगा? तो वो स्थिति है आत्मा की स्थिति। आत्मा की क्या मूल स्थिति है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। जीव की मूल स्थिति है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, कृष्ण का दास। तो वो सब दूसरी दूसरी स्थिति जो है, चाहे भी इंद्र, चाहे भी चंद्र, चाहे भी जो भी हो, सब क्षणिक है। लेकिन यही स्थिति आध्यात्मिक सनातन स्थिति है, श्री कृष्ण का दास, वही स्थिति, वो आत्मा की स्थिति। तो इसलिए जो देव देव पूजा करते हैं तो देवता सूर्य मिल सकते हैं, जो तमोगुणी है, और इसलिए भूत प्रेत पिशाच राक्षस इत्यादि की पूजा करते हैं, तो वैसे ही गति मिलते हैं। और जो पितृगण की पूजा करते हैं तो वैसे ही स्थिति मिलते हैं। तो जो देव देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक जाते हैं, जो पितृगण की पूजा करते हैं पितृलोक जाते हैं, जो याक्ष भूत प्रेत की पूजा करते तो वैसे स्थिति में, और जो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं शुद्ध कृष्ण भक्ति करते हैं तो श्री कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण लोग जाते हैं या विष्णु लोग जाते हैं, और वहां पर कृष्ण का किंकर वैसे रूप में, तो वो सनातन रूप है। तो कोई कोई श्री कृष्ण की सेवा में, नारायण की सेवा में, तो चतुर्भुज मूर्ति जैसे नारायण की मिलते हैं। लेकिन विष्णु लोक में कि नारायण भगवान है तो सबके चतुर्भुज है, लेकिन कि यही व्यक्ति परम पुरुष नारायण है वो स्पष्ट है, प्रकट है, वो नारायण का श्रीवत्स चिन्ह बक्ष में, और सब इनकी सेवा करते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सभी प्रकार की आराधना एक ही नहीं है। ऊर्ध्वंग चंति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजसाह जगन्य गौण वृतिस्थो अधोग चंति तामसाह। दूसरे स्थान गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो सत्व गुण है ऊपर जाते हैं, जो राजगुणी है इस मध्यम अवस्था भूलोक में रहते हैं, और जो तमगुणी है तो नीचे जाते हैं। तो जो सात्विक प्रकार की पूजा करते हैं तो ऊपर जाते हैं, जो राजसिक है राजसिक प्रकार की पूजा करते हैं तो ऐसे इस पृथ्वी में अगले जन्म लेते हैं। तो श्री कृष्ण की पूजा तो साधारण प्रकार की नहीं है। श्री कृष्ण की पूजा विशेषकर जो सांप्रदायिक पारंपरिक अर्थात शुद्ध वैष्णव परंपरा के अनुसार है वो आध्यात्मिक, और दूसरे प्रकार की पूजा देव देवी की पूजा वो आध्यात्मिक नहीं है। जैसे कि इसके पहले श्री कृष्ण बोलते कि जो देव देवी पूजा, I have to keep away from it. Better don't take photos. कि जो देवी पूजा करते हैं किस लिए करते हैं? काम स्थाई हृदय ज्ञान प्रबद्यंते न्य देवता। लोग देवी की पूजा करते हैं किस लिए? काम काम स्थाई हृदय ज्ञान कुछ भौतिक कामना है, इसलिए पूजा करते हैं। मुझको ये वर दो, वो वर दो, मुझको आशीर्वाद दो, तो ऐसे उद्देश्य है देव देवी की पूजा में। तो कृष्ण की पूजा में भी वो संभव है कि लोग कृष्ण की पूजा करते हैं और ऐसे अनेक बार मांगते हैं, लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्ति में एक ही उद्देश्य है। भक्तों तो पूजा करते हैं और एक ही प्रार्थना है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोले तो भगवान से क्या वर मांगना चाहिए? ना धनम, ना जानम, ना सुंदरी, कवितांग वा जगदीश कामे। तो सब लोग भगवान के पास जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं और देवी देवियों के मंदिर में जाते हैं और ना धनम नहीं बोलते, मुझको धन, मुझको पैसा दो। हे भगवान, आप बहुत बड़ा धनी है तो कम से कम मुझको 2-3 लाख दो, आपके लिए कुछ नहीं है, मुझको दो। तो ऐसा कुछ आकांक्षा है, मुझको पैसा दो, जन्म मैं बड़ा नेता हूंगा तो चुनाव सामने है तो मुझको चुनाव में जय बनेंगे। ना जानम, ना जानम, ना सुंदरम, और ऐसा प्रार्थना भी है कि वो एक बहुत सुंदरी लड़की है तो भगवान आप व्यवस्था करो, उसके माँ बाप तैयार नहीं है उसको मुझे देना, तो आप कुछ बंदोबस्त करो जैसे कि उससे मैं शादी कर सकती हूँ। कवितांग वा जगदीश कामे, कविता इसमें कविता शब्द का मतलब तो वेद शास्त्र में सभी प्रकार का वर जो प्राप्त करना संभव है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं मांगता, ना धनम, मैं धन नहीं चाहता हूँ, जन अनुगामीगण नहीं चाहता हूँ, सुंदरी, जो चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, इनकी बहुत ही सुंदरी पत्नी थी लेकिन घर में रख दिया और वहां आ गए सन्यास लिया। तो जरूर सन्यासी की प्रार्थना नहीं होगा, हे भगवान मुझको एक सुंदरी दो। और एक्चुअली सन्यासी का मतलब जो विरक्त है, तो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो यही सन्यास। तो इसलिए कोई कोई सोचते कि सन्यासी की कोई प्रार्थना नहीं है, सन्यासी एकदम उदासीन है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सन्यासी, और वैष्णव तो विष्णु की आराधना करते हैं, विष्णु अस्य देवता इति वैष्णव। तो कैसे एक सन्यासी तो भगवान की पूजा करते हैं? क्योंकि मायावाद संप्रदाय में, अद्वैत संप्रदाय में यही भूल धारणा है कि जब सन्यास लेना है तो वो व्यक्ति नारायण के समान होते, वो स्वयं नारायण बन जाते, लेकिन वैष्णव सन्यास में समझना है कि वो ही संभव नहीं है। नारायण नारायण है, वही भगवान है, और वैष्णव संप्रदाय में सन्यास लेना है किस लिए? नारायण की सेवा करने के लिए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के बाद तो यही श्लोक वो भगवत से बारंबार बोले, इतांस अस्थाय पराम निष्ठम अध्यासितम पूर्वतमान हद्दि अहम चरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदाम निशेमया। कि मैं सन्यास लिया था किस लिए? मुकुंद की सेवा प्राप्त करने के लिए। जैसे कि भगवान की सेवा में कोई अंतराय नहीं होगा, जैसे कि मैं खाली होऊंगा केवल मुकुंद की सेवा करने के लिए, और इनकी सेवा करने से मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे कि बहुत बहुत महात्मा गण मेरे पहले परम सिद्धि प्राप्त की है, मैं भी ऐसा करूंगा। Vitaraga Bhayakrodha Manmaya Mamupashitaha Bhavo Jnana Tapasa Putamat Bhavamanataha. तो सन्यास सन्यासी का कार कर्तव्य है तो ज्ञान अर्जन करना और तपस्या करना तो किस लिए जैसे कि काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से मुक्त होकर मुक्ति मिल सकते तो श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि जो ऐसे ज्ञान और तपस्या में प्रवीण थे बहुत इसके पहले बहुत काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त हुए मेरी सेवा मिल गए हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु का संकल्प था कि मैं सन्यासी हूँ मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूँगा और उनकी कृपा से मैं परम सिद्धि प्राप्त करूँगा तो चैतन्य महाप्रभु की कोई भौतिक कामनाएं नहीं थी फिर भी भगवान से कुछ मांग लिया था क्या मांग लिया चैतन्य महाप्रभु बोले मैं धन जन सुंदरी और कुछ भी भौतिक वर नहीं चाहता हूँ तो यही वर हे भगवान मुझको दो यही मैं चाहता हूँ कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद् भक्ति रहायतु द्वयि कि मम जन्मनि जन्मनि सामान्य रूप सन्यासियों सन्यास लेते मुक्ति प्राप्त करने के लिए लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं मुक्ति भी नहीं चाहता हूँ मैं जन्म नहीं जन्म नहीं अर्थात मेरे सभी जन्म में यही वर चाहता हूँ कि आपकी अहैतु की सेवा मिल सकता हूँ अहैतु की ये शब्द का क्या मतलब है जिसमें कोई हेतु नहीं है अर्थात कोई भौतिक कारण नहीं होगा तो लोग तो पूजा आराधना यज्ञ इत्यादि करते हैं क्योंकि कुछ हेतु है कुछ उद्देश्य है तो जब बहुत दिन में तो बारिश नहीं होते हैं तो यज्ञ करना है इसलिए जैसे कि देवताओं संतुष्ट होंगे और बारिश के हो जाएंगे तो जब दंपति का कोई संतान उसको शांत कर जब कोई दंपति का कोई संतान नहीं होते हैं तो यज्ञ बनवाते हैं पुत्रेष्टि कामन पुत्रेष्टि यज्ञ जैसे कि पुत्र संतान की उत्पत्ति होगी तो ऐसे तीर्थ यात्रा करने है और दैनिक नित्य कर्म करने है धार्मिक कर्म किस लिए लोगों के उद्देश्य होते कि ऐसे पूजा करने से हम चिरायु मिलेंगे काफी पैसे मिलेंगे और सुख शांति मिलेंगे कुछ उद्देश्य होते तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की सेवा किस लिए की तो ऐसा कोई उसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं थी कि भगवान मैं आपकी पूजा करता हूँ और पूजा करने से यही वर मांगते हैं कि आप मुझे काफी पैसा देंगे सुख शांति देंगे तो ऐसा तो कोई इच्छा नहीं है चैतन्य महाप्रभु की एक ही इच्छा थी कि मैं इस सेवा करने से यही वर मिलूंगा कि मैं अवसर मिलूंगा और सेवा करने के लिए भक्ति करने से क्या प्राप्त होते हैं भक्ति और भक्ति का क्या मतलब सेवा क्योंकि वो ही जीव का स्थिति है जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास और वो ही सेवा करने से पूर्ण आनंद मिल जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि मैं पूजा करूंगा और उससे धन जन सुंदरी इत्यादि मिलूंगा और किस लिए धन जन इत्यादि चाहते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि धन जन इत्यादि मिलने से मैं सुखी होंगी लेकिन देखते हैं कि कितना धनी व्यक्ति है लेकिन धनी है लेकिन सुख शांति नहीं है और धनी होते हैं, लेकिन मृत्यु का समय जो धनी है और जो रास्ते में भिखारी है, तो दोनों एक स्थिति में समान होते मृत्यु का समय। तो हम खाली हाथ आते हैं, और भिखारी लोग तो पूरा जीवन खाली हाथ रहते हैं और ऐसे मार जाते हैं। और जो धनी है तो खाली हाथ आते हैं और थोड़ा समय के लिए सोचते हैं कि मेरे जेब में काफी पैसा है, मेरे जेब में, मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे अलमारी में सब ब्लैक मनी है, तो काफी पैसा है। लेकिन मृत्यु का समय खाली हाथ जाते हैं, और साथ में क्या जाते हैं, वो पाप कर्म का फल। तो इतना पैसा कैसे मिलते हैं, तो दुराचार करने से, अन्याय से मिलते हैं, और उसके बाद यमराज से तो काफी दंड मिलेंगे। तो यही सब वर जो है, धन जन पैसा इत्यादि, तो हम सोचते तो इससे हम आनंद मिलेंगे, लेकिन वास्तव में उसमें आनंद नहीं है। और यदि हम मिलते हैं धन जन इत्यादि, तो बहुत क्षणिक समय के लिए मिलते हैं और हमारे पास नहीं रहेंगे। श्री कृष्ण से केवल यही प्रार्थना करना चाहिए कि मुझको आपकी शुद्ध भक्ति और आपकी सेवा करना का अवसर दीजिए, क्योंकि उसमें परम सुख होते हैं। तो साधारण लोग इसको समझ नहीं सकते, सोचते कि भक्ति में क्या है, तो केवल भगवान की सेवा करना है, और देखते हैं कि भक्तों बहुत सुबह सुबह उठते हैं और टीवी फिल्म वो सब नहीं देखते, तो मांस मछली अंडा नहीं का कॉफी पी नहीं पीते, तो किस प्रकार का जीवन है, उसमें क्या आनंद है। लेकिन नहीं जानते कि भक्तों वो सब नहीं करते, फिल्म नहीं देखते, कोई इच्छा नहीं है देखने, और कॉफी नहीं पीते, कोई इच्छा नहीं। तो एक्चुअली यही संकेत कि भक्तों दूसरा प्रकार आनंद मिलते हैं, तो वो एकदम निकृष्ट प्रकार का आनंद में कोई रुचि नहीं लेते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उस प्रकार का आनंद जो इंद्रिय सुख बोलते, तो उससे एक प्रकार और बहुत परम आनंद मिलते हैं। वो सही है, भक्तों की कोई इच्छा नहीं है फिल्म जाना, टीवी देखना, पार्टी जाना, मांस खाना, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि कृष्ण भक्ति में इतना आनंद होते। तो वैसे बहुत सामान्य इंद्रिय सुख में तो कोई रुचि नहीं लगती, और भक्तों की इच्छा है तो चिरकाल के लिए ऐसी सेवा करना। तो भगवान की भक्ति ऐसे ही, साधारण लोग तो ये तो नहीं समझते, सोचते कि हम ऐसे ही पूजा करेंगे, वैसे ही पूजा करेंगे, ऐसे ही प्रयास करेंगे, जैसे कि हम सुखी रहेंगे इस भौतिक जगत में। लेकिन जो बुद्धिमान है जान रहे कि इस भौतिक जगत में सुख क्या है, जो सुख का नाम नहीं चलते वो तो सुख नहीं है, वास्तविक सुख है श्री कृष्ण की सेवा। तो इसलिए भक्तों की कोई इच्छा नहीं है स्वर्ग लोक जाना, इच्छा हो सकते हैं कि हम स्वर्ग लोक जाके इंद्र और सभी देवताओं को प्रचार करेंगे, हे इंद्र अभी आप इंद्र है और अगले जन्म में आप कीट या कृमि होगा, तो अच्छा हो हरे कृष्ण बोलो और वापस नीचे मत जाओ, डायरेक्ट कृष्ण धाम जाओ। तो हम स्वर्ग लोक जा सकते हैं प्रचार करने के लिए, लेकिन अप्सराओं के साथ नाचने के लिए क्या जरूरत, हम भक्तों के साथ इधर ही कीर्तन में कृष्ण कीर्तन में नाचते हैं, वो दिव्य प्रेममय नाचना है, और वो अप्सराओं के साथ या डिस्को डांसिंग पार्टी जाना वो क्या है, वो मूर्ख लोगों के लिए, वो वास्तविक प्रेम नाच प्रेम नृत्य की प्रतिबिंब है। और उससे एक्चुअल आनंद मिलने का कोई संबंध नहीं। तो समझना चाहिए कि श्री कृष्ण की सेवा में और सभी प्रकार के भौतिक काम और श्री कृष्ण की पूजा में और सभी दूसरी प्रकार की पूजा में ये अंतर है। सभी प्रकार की भौतिक पूजा जो है जो आध्यात्मिक नहीं है, तो वो सभी प्रकार देव देवियों की पूजा से तो खाली भौतिक फल मिल सकते। और भौतिक फल का मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख मिश्रित होते हैं। और श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में जिसमें भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहते हैं, जिसमें भक्तों की एक ही इच्छा होती है कैसे मेरे सेवा से भगवान संतुष्ट होंगे, भक्तों की कोई दूसरी इच्छा नहीं है। तो सभी काम जो करते हैं, सभी वचन जो बोलते हैं, सभी प्रयास जो करते हैं, सब केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो वो प्रयास श्री कृष्ण की सेवा है, वो पूरा आध्यात्मिक है। और ऐसा प्रयास करने से श्री कृष्ण का पूरा आशीर्वाद मिलते हैं और भक्तों श्री कृष्ण की कृपा से अवसर मिलते हैं इस वर्तमान शरीर चरण का समय तो डायरेक्ट भगवान के पास जाते हैं और सदैव चिरकाल के लिए भगवान के धाम में रहते हैं और श्री कृष्ण की प्रेमानंदमय सेवा करते हैं। तो आदि हम इस बहुत ही दुर्लभ मानव शरीर में है, तो अभी सोचना चाहिए इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, हम नियंत्रण नहीं है, लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे शुद्ध भक्ति में, यदि हम प्रयास करेंगे शुद्ध भक्ति करने तो जरूर श्री कृष्ण हमको सहायता करेंगे। श्री कृष्ण की इच्छा है कि हम इनके पास जाएंगे और यदि हम ऐसे प्रयास करेंगे तो भगवान जरूर हमको मदद करेंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे, जो प्रयास करते हैं श्री कृष्ण की सेवा में जरूर भगवान वैसे भक्तों की सहायता करते हैं। तो ऐसे विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण की सेवा करना मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य है। तो दूसरे दूसरे प्रकार भी काम करना है, जैसे कि परिवार के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, लेकिन परम कर्तव्य है श्री कृष्ण की सेवा, जिससे हम भगवान के धाम जा सकते हैं, जिससे हम सभी प्रकार की माया से मुक्त हो सकते हैं, जैसे कि इस दुर्लभ मानव जन्म सफल बन सकते हैं। तो इसलिए सभी लोगों के लिए ये कृष्ण भक्ति करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल हम जो इसका में है ये हमारा मत है और इसलिए हम वैसे पहचान करते हैं, ये शास्त्रीय है। जो गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं हम वैसे ही बोलते हैं, okay? नहीं है कि तो हम इस दल में है इसलिए हम वैसे बोलते नहीं है, क्यों श्री कृष्ण बोलते इसलिए हम वैसे प्रचार करते हैं। तो यही सच है। और सब दूसरे प्रकार का मत और वाद और तो वो सभी काल्पनिक है, तो यही शास्त्र है, यही श्री कृष्ण का वचन है। तो उनके चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए, इससे सभी जीव का चरम कल्याण होगा, तो इसमें विश्वास होना चाहिए। तो भक्ति भक्ति करने में कोई कठिनाई नहीं है, यदि हम करेंगे हम फल मिलेंगे। वो फल क्या है, हम चिरकाल के लिए श्री कृष्ण की आनंदमय प्रेममय सेवा मिलेंगे। और यदि हम नहीं करेंगे तो तो करीब हम देवगण के पास जाएंगे, लेकिन कलि युग में कोई देवता के पास नहीं, एक देवता के पास जाते यमराज। जो कृष्ण भक्ति नहीं करते तो ऊपर नहीं जाते, सब नीचे जाते, क्योंकि कलि युग में जो कृष्ण भक्ति नहीं करते तो सब पाप आत्मा। अभी देखते हैं तो हिंदू समाज में सब जो नहीं करना चाहिए तो सब जैसे ही नॉर्मल हो गया, सब मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और सोचते हैं यही नॉर्मल है, और सभी रास्ते में विज्ञापन लगाना है तो गर्भपात 150 रुपया पैसे कितने है हैदराबाद में नहीं देखा कभी, कल आया था तो गुजरात में 150 और बम्बई में 100 रुपया। तो इसका क्या मतलब है कि अवैध स्त्री संग चौकते हैं बहुत, कोई नहीं बोलते, सब सोचते हैं कि दूसरी लाख हम करते हैं, मेरी लाख ऐसा नहीं करते, लेकिन कोई पता नहीं है। तो वो सब अबॉर्शन क्लिनिक भरा होते है तो कौन जाते है, तो ऐसा लगते है अनेक जाते। तो यही हिंदू समाज की स्थिति है आज का, एकदम पतित हो गया, और हिंदू अहिंदू तो सब पाप करते हैं। तो ये नरक भोग बचाने के लिए तो यही एक रास्ता है कृष्ण भक्ति करना, भगवद गीता यथारूप के अनुसार। नहीं तो ऐसे देखते बहुत आधुनिक योगी ज्ञानी गुरु तथाकथित साधु तो ऐसा प्रचार करते हैं, तो मांस खाओ उसमें क्या है, कोई नुकसान नहीं है, जो भी करना चाहते हो वैसे करो, फ्री हो, जैसे भी इच्छा वैसे करो। तो यही शास्त्रीय नहीं है, ये धार्मिक नहीं है, लेकिन ऐसे स्वामी बहुत है। तो सुबह कुछ ध्यान करो और उसके बाद जैसे इच्छा भी हो वैसे करो, कोई पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, सब एक ही है ऐसे। तो इसलिए ये भगवद गीता यथारूप का प्रचार का बहुत बड़ा प्रयोजन है। तो लोग नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और सोचते हैं कि सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही नहीं है। यदि कृष्ण की सेवा करना है तो कृष्ण के पास जाना, लेकिन कैसे कृष्ण की सेवा करना तो वो बिल्कुल शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि काल्पनिक प्रकार से, ऐसा नहीं होगा। इसलिए तो सांप्रदायिक गुरु और भक्तजन के मार्गदर्शन के अनुसार ये कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, जैसे कि इसमें कोई भूल नहीं होगा, नहीं तो अनेक भूल हो सकते। आजकल सभी लोग तो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, और धर्म क्षेत्र में भी तो सब बहुत विभ्रमित होते हैं, एक स्वामी ऐसे बोलते हैं, दूसरे स्वामी दूसरी बात बोलते हैं। तो इसलिए हम केवल श्रीमद् भागवत गीता यथारूप पालन करते हैं। श्री कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं, जो देव देवी पूजा करते हैं तो देव देवी उनके पास चलते हैं, जो भूत प्रेत इत्यादि की पूजा करते हैं तो वैसे स्थिति, और जो मेरे चरण में आत्मसमर्पण करते हैं और मेरी प्रेममयी सेवा करते हैं तो वैसे स्थिति। तो आप विचार कीजिए, आप कहाँ जाएंगे, आपकी क्या इच्छा है। यदि इच्छा हो तो भूत प्रेत बन जाएंगे, ऐसे देखते हैं तो ज्यादा लोग तो अगले जन्म का कई प्रश्न नहीं, यही जन्म में वैसे राक्षस जैसे, तो राक्षस होना तो अच्छा नहीं है, तो कृष्ण भक्त होना चाहिए। तो यही पवित्र जीवन है, तो इस जीवन में भी आप पवित्र रूप में जीवन व्यतीत कर सकते हैं यदि आप इस शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे, और इसके बाद आपका भविष्य मंगल होगा। और यदि इस जीवन में हम अमंगल कार्य करेंगे तो जरा तो बाद में भी पूरा अमंगल होगा। तो आप जरे से विचार कीजिए आपका जीवन कौन सा तरह त्याग है, तो विचार करना चाहिए। तो ज्यादा लोग तो विचार नहीं करते, तो सब दूसरे लोग जो करते तो वो सब लोग तो ऐसा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तो मैं भी करूँगा, तो ऐसा नॉर्मल है, तो नहीं सोचते तो हम कौन सा तरह चाहते। तो आप विचार कीजिए। तो इसलिए हम सबको बोलते हैं कि भगवद गीता यथारूप घर में रख दीजिए, और खाली रखना नहीं है, पढ़ना चाहिए। ऐसा है कि बहुत लोग हमसे भगवद गीता लेते हैं और रोज कुछ पूजा करते हैं लेकिन कभी नहीं खोलते, इसमें क्या उपदेश है? तो गीता की पूजा करने से जरूर कुछ फायदा होगा, कुछ पुण्य होगा उससे, लेकिन खाली घर में रखना और पूजा करने से पूरा फायदा नहीं होगा। इसको खोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए और श्री कृष्ण जो बोलते हैं उसको पालन करना चाहिए, ये पूरा कल्याण होगा। तो ये हमारे निवेदन है, कृष्ण भक्ति करो, और किस लिए करना चाहिए और कैसे करना है, तो आप ये स्थानीय भक्तों से पूरा मार्गदर्शन ले सकते हैं, और ये सभी पुस्तकों में भी है। प्रभुपाद बहुत ही पुस्तकें लिखी, और मैं भी प्रभुपाद का आदेश के अनुसार कुछ पुस्तक लिख दिए। तो इसमें कैसे कृष्ण भक्ति करना घर में, बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियस, वो भी है तेलुगु हिंदी डोंट हैव इंस्टॉल, तो दूसरी भाषा में है, हिंदी बंगाली, हिंदी अभी इधर ही नहीं, बंगाली तमिल तेलुगु ये सभी भाषाओं में है। तो यही हमारे निवेदन है, आप जरा सा सोचिए आपका जीवन कौन से तरफ जाते हैं। यदि आप संकल्प किया है कृष्ण भक्ति करने, तो और विचार कीजिए, मैं अच्छी तरह भक्ति करता हूँ, मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि नहीं, विचार करना चाहिए, ये संकल्प करना चाहिए कि कृष्ण भक्ति मेरा जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्ण। तो यदि कोई ये सभी पुस्तक लेना चाहते हैं तो आ सकते हैं ये सब देखने के लिए। रामायण है, हाँ हाँ, फिर भी चक्र है, उनकी श्रेष्ठता दिखाने के लिए कि मैं बॉस हूं। जैसे कि पाश्चात्य देशों में और ऐसे जैसे इंग्लैंड में रानी है, तो ऐसे कोई फंक्शन में तो साथ में तलवार रखते, तो कोई जरूरत नहीं है लेकिन दिखाने के लिए वही रानी है, एक्चुअली राजा होना चाहिए, तो रानी महिला क्या करेंगी तलवार के साथ, तो राजा होना चाहिए, लेकिन ऐसे अभी तक ऐसे। तो राजा तो अपना राजसभा में भी तलवार रखते, तो अपना सभा में का कोई जरूरत नहीं है लेकिन ऐसा रखना है दिखाने के लिए वही राजा है। सभी के पास नहीं, वो भाई विष्णु दूत जो इस जगत में आते हैं तो वो सब दिखाते हैं। हाँ नहीं, तो सब तो भगवान का विशेष चक्र है, वो सुदर्शन चक्र बोलते हैं, तो सबके पास सुदर्शन चक्र नहीं है, तो चतुर्भुज से भगवान की सेवा करते हैं, तो सब सुदर्शन चक्रधारी नहीं है, वो भगवान की चिन्ह ये सब। हाँ तो ऐसा हो सकता है लेकिन हमें, हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन हमेशा वो सब नहीं रखना है, हाँ सारूप्य, लेकिन हमेशा वो सब वो चार अंग नहीं रखते, दूसरी सेवा भी करते चाहता हूँ से। कोई दूसरा प्रश्न? हरे
कृष्ण,
आई कांट हियर इट।
How can you serve Krishna in the best way? What is the best way?
How can you serve Krishna in the best way?
Yes,
yes, this way. इसी जगत में कैसे श्रेष्ठ रूप में भगवान की सेवा करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरणम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, बहुत प्रकार की सेवा होती है। तो आप मंदिर में आके झाड़ू लगा सकते हैं, या भगवान की पूजा कर सकते हैं, या प्रचार कर सकते हैं। तो दूसरी दूसरी प्रकार की सेवा होती है, और एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण नहीं है तो किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भावना, वो भक्ति भावना होना चाहिए। तो सभी प्रकार की सेवा, जैसे कि हनुमान, तो लंका जाके तो लंका दहन किया है, तो हम तो ऐसे सेवा नहीं कर सकते, तो हनुमान तो इतना वरिष्ठ भक्त है तो ऐसे सेवा कर सकते। तो जितना भी शक्य था हम कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो इस भगवद गीता प्रचार करते हैं तो वो मेरा प्रिय भक्त है, तो आप प्रयास किसी एक प्रचार करें, तो पहले ये सब सिद्धांत समझना चाहिए। इसके पहले प्रचार करना तो विकृत फल होगा, विपरीत फल होगा, यदि हम नहीं जानते कि प्रचार क्या बोलेंगे तो क्या बताएंगे। तो यदि आप एक्चुअली सब प्रचार कर सकते हैं, इसमें क्या कठिनाई है, तो सबको बोल सकते हैं हरे कृष्ण बोलो, कम से कम ऐसे बोलो, तो सब ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन फिर लोग कहेंगे तो किस लिए हम हरे कृष्ण कहेंगे, ये वो बहुत प्रश्न आएगा। लेकिन कम से कम ये बोलना चाहिए हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो, और लोगों को प्रभुपाद की पुस्तक हम दे सकते। और इस प्रचार का प्रयत्न आप मदद कर सकते आर्थिक रूप से या कोई भी रूप। हरे कृष्ण, माता जी भगवान की सेवा में गाते हैं कीर्तन कीर्तन। हाँ वेरी नाइस, हरे कृष्ण, दिस इज हिंदी, ओके गुड। तो कोई यदि पुस्तक देखेंगे हिंदी तेलुगु इंग्रेजी में तो आ जाएगी।